इंसान की ना एक बहुत ही अजीब फितरत होती है। मतलब जब भी कोई गहरा संकट आता है या जब चारों तरफ से खतरे मंडराने लगते हैं।
हाँ, जब डर पूरी तरह से दिमाग पर हावी हो जाता है।
बिल्कुल, जब डर हावी हो जाता है तो इंसान अक्सर अपनी रक्षा के लिए ना उसी ताकत को चुन लेता है जो असल में उसकी तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने वाली होती है।
इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए या आज की दुनिया के समीकरण समझ लीजिए, ये रवैया बार बार सामने आता है।
वही तो, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें इंसान अपनी ही बुनी हुई सुरक्षा की उम्मीदों में फंसकर रह जाता है।
और इसी अजीब फितरत का हम आज इस डीप डाइव में बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड द्वारा दिए गए एक व्याख्यान पर आधारित है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ यशाया यानी आइज़ाया के अध्याय 17 और 18 पर ये चर्चा की है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है। मतलब इसमें सत्ता के खेल, इंसान के भीतर बैठे गहरे डर और उस भ्रम की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है जिसे हम जिसे नियंत्रण का भ्रम कह सकते हैं।
हाँ, वो भ्रम की हम अपने जीवन के या इस दुनिया के इकलौते कंट्रोलर हैं।
बिल्कुल, ये सोचना कि परिस्थितियां हमारे हाथ में है जबकि असल में होता नहीं है।
और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की इस उथल पुथल और सूचनाओं के शोर से भरी दुनिया में ये विषय बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। मतलब ये चर्चा सिर्फ ये समझने के लिए नहीं है कि अतीत में राजाओं ने क्या किया, बल्कि
ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आज जब हमारी अपनी जिंदगी में कोई तूफान आता है तो हम सुरक्षा के लिए कहाँ भागते हैं। क्या हम अपनी बनाई हुई ताकतों पर निर्भर होते हैं या किसी सर्वोच्च सत्ता पर।
बिल्कुल सही। तो इस पूरी दुविधा की जड़ को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाना होगा जहाँ से भरोसे का यह पूरा संकट शुरू होता है।
हाँ, डॉक्टर ओसवाल्ड के विश्लेषण के अनुसार शुरुआती अध्याय एक ऐसे समाज को दिखाते हैं जो अपनी महानता और सत्ता के नशे में अंधा हो चुका है। वहां बहुत भ्रष्टाचार है और लोगों को लगता है कि उनकी बनाई हुई ये व्यवस्था कभी गिरेगी नहीं।
मतलब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था अपनी ताकतों पर।
बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे कथा अध्याय 7 से 39 की तरफ बढ़ती है एक ही विषय बार बार उभर कर आता है और वो है भरोसा। स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि दोहराव ही शिक्षा की आत्मा है।
अच्छा, वो बार बार पूछने वाली बात।
हाँ, जब एक ही सवाल बार बार पूछा जाए कि तुम किस पर भरोसा करते हो तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है।
ठीक है, तो इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब उस परीक्षा का सबसे शानदार और मैं कहूंगा थोड़ा व्यंग्यात्मक उदाहरण हमें राजा आहास की कहानी में देखने को मिलता है। आहास के छोटे से राज्य पर उसके दो पड़ोसी देश सीरिया और इसराइल हमला कर रहे थे।
और उनका मकसद क्या था? वो चाहते थे कि आहाज उनके साथ मिलकर उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति अशूर के खिलाफ गठबंधन बनाए।
हाँ, और आहाज खौफ में था। मतलब उसे सलाह दी गई थी कि भाई शांत रहो और केवल उस सर्वोच्च सत्ता पर भरोसा रखो। लेकिन
डर उसकी तर्क शक्ति पर भारी पड़ गया। डर हमेशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पंगु बना देता है।
वही तो। और फिर आहाज ने खौफ में एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उसे उस वक्त कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक लगा हो, लेकिन असल में वो आत्महत्या के समान था। उसने उन्हीं पड़ोसियों से बचने के लिए उस खूंखार महाशक्ति अशूर को ही अपनी रक्षा के लिए बुला लिया,
जो कि असल में पूरे क्षेत्र को निगलने के लिए तैयार बैठी थी।
बिल्कुल। और यहां पर स्रोत में डॉक्टर ओसवाल्ड एक बहुत ही कमाल की उपमा देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि सोचिए, तीन चूहे किसी रोटी के टुकड़े के लिए आपस में भयानक लड़ाई कर रहे हों और उनमें से एक चूहा ये सोचे
कि इस लड़ाई को जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मोहल्ले की सबसे बड़ी बिल्ली को अपनी सुरक्षा के लिए काम पर रख लिया जाए।
हाँ हाँ, मतलब क्या ये एक भयानक और हास्यास्पद रणनीति नहीं है, बिल्ली को रक्षक बनाना?
हाँ, किसी भी चूहे के लिए तबाही का निमंत्रण है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें ना तो आहाज का यह कदम कोई अपवाद नहीं है। ये हमारे मानवीय स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई है।
बिल्कुल, हम भी तो यही करते हैं।
जब हम समस्याओं से घबरा जाते हैं तो हम अक्सर किसी ऐसी बड़ी ताकत के आगे घुटने टेक देते हैं जो अंततः हमारी बची खुची आजादी भी छीन लेती है। हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं,
जबकि असल में हम अपने विनाश को खुद बुला रहे होते हैं। और इसी से हम अध्याय 17 की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सीरिया यानी दमिश्क और इसराइल के पतन की बात एक साथ की गई है।
हाँ, क्योंकि इंसान का ये स्वभाव है कि वो अक्सर उसी चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता है या उसी पर भरोसा करता है जो उसके सबसे करीब होती है।
और जब ये सारी सांसारिक ताकतें ढह जाती है ना, तो उसके बाद का जो दृश्य स्रोत में उकेरा गया है वो सच में बहुत ही काव्यात्मक है। यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब पतन के बाद की स्थिति को एक कटे हुए खेत की तरह बताया गया है।
बिल्कुल, एक ऐसा खेत जहां कभी लहलहाती फसल थी, लेकिन कटाई के बाद अब बस कुछ बिखरे हुए डंठल बचे हैं।
या फिर वो जैतून के पेड़ वाली उपमा।
हाँ, वो जैतून का पेड़ जिसे पूरी ताकत से झकझोर दिया गया हो और अब उसकी सबसे ऊंची टहनी पर बस दो चार फल ही बचे हों।
मतलब सब कुछ छिन जाने के बाद बस एक बहुत ही छोटा सा अंश बचता है, लेकिन यही वो पल है जब इंसान की आंखें असल में खुलती हैं, जब वो अपनी बनाई हुई ताकतों को, अपने हाथों के काम को छोड़कर अपने सच्चे निर्माता की ओर देखता है।
और यहाँ डॉक्टर ऑसवाल्ड के व्याख्यान में एक बहुत ही गहरी वैचारिक बहस सामने आती है, विकासवाद बनाम एक पारलौकिक निर्माता की बहस।
और ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है।
नहीं, ये इंसान के दुनिया को देखने के नजरिए का सवाल है। स्रोत बिना कोई पक्ष लिए यह स्पष्ट करता है कि अगर कोई ये मानता है कि सब कुछ केवल एक भौतिक घटना है, तो उसे लगता है कि जीवित रहने के लिए उसे इस दुनिया के हर हिस्से को कंट्रोल करना होगा।
वो नियंत्रण का भ्रम फिर से आ गया।
बिल्कुल, हम नई तकनीकें बनाते हैं, बड़ी संस्थाएं खड़ी करते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा भूचाल आता है जहाँ ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं,
तब वो कांच की तरह टूटता है। उस कटे हुए खेत के सन्नाटे में इंसान को समझ आता है कि वो खुद को बचाने में असमर्थ है।
बिल्कुल सही।
लेकिन यहां मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है, मतलब अगर इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि ये भ्रम टूटना ही है, तो लोग इतनी आसानी से अपने निर्माता को भूल कैसे जाते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस भूलने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें प्राचीन हिब्रू संस्कृति की सोच को समझना होगा।
अच्छा, वो कैसे अलग है हमारी सोच से?
देखिए, आज के आधुनिक दुनिया में हम विचार और कर्म को अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग में कोई बात जानना ही उसे याद रखना है, लेकिन प्राचीन हिब्रू सोच में विचार और कर्म अलग नहीं है।
मतलब वहाँ ईश्वर को याद रखने का मतलब केवल दिमाग में सूचना होना नहीं है?
नहीं, वहाँ याद रखने का मतलब है उसकी आज्ञा मानना, उस आधार पर अपना जीवन जीना, और भूलने का अर्थ है जानबूझकर उसकी अवहेलना करना।
ओहो, मतलब अगर कोई कहता है कि उसे सब पता है लेकिन उसके कर्म उल्टे हैं, तो उसने सब भुला दिया है।
बिल्कुल, डॉक्टर ऑसवाल्ड इसे स्पष्ट करने के लिए बार्ट एहरमन का उदाहरण देते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने गहरा अध्ययन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जानबूझकर अपने विश्वास को नकारा और उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया।
तो भूलना कोई दिमागी कमजोरी नहीं है?
नहीं, ये एक सचेत विकल्प है, एक कॉन्शियस चॉइस है। इंसान खुद अपना भगवान बनना चाहता है।
अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से जीवन जीना चुनता है और फिर अचानक उसके शहर तबाह हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऊपर बैठा कोई तानाशाह बस इसी ताक में है कि हम कोई गलती करें और वो हमें सजा दे दे?
हाँ, किसी को भी ये लग सकता है।
मतलब क्या ये सजा बहुत ही मनमानी या आर्बिट्रेरी नहीं लगती?
ये शंका बहुत लाजमी है, लेकिन स्रोत इस भ्रांति को बहुत ही सटीक तरीके से तोड़ता है। ये कोई मनमानी सजा नहीं है। डॉक्टर ऑसवाल्ड पौधों को पानी न देने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो उदाहरण बहुत स्पष्ट है।
मान लीजिए आप बेहतरीन पौधे लाते हैं, लेकिन आलस के कारण उन्हें पानी नहीं देते या उन्हें धूप में नहीं रखते, तो क्या होगा?
वो मर जाएंगे, जाहिर सी बात है।
बिल्कुल। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि भगवान को उन पौधों से नफरत थी इसलिए उन्हें मार दिया। ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का प्राकृतिक नियम है।
तो मतलब कर्मों के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं।
हाँ, अगर आप जीवन की नींव गलत सिद्धांतों पर रखेंगे तो व्यवस्था चरमराएगी ही। ये प्राकृतिक परिणाम है, कोई मनमाना ईश्वरीय गुस्सा नहीं।
ये बात तो समझ आ गई। अब अगर हम यशाया के अध्याय 17 के अंत और 18 की तरफ बढ़ें, तो वहां एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास दिखता है। मतलब एक तरफ तो ये दुनिया है जो अपने कर्मों के कारण लगातार उथल पुथल में है, और दूसरी तरफ ईश्वरीय प्रतिक्रिया है।
बिल्कुल, वहां राष्ट्रों का वर्णन उफनते समुद्र की तरह किया गया है। वो महाशक्तियां गरजती हैं, शोर मचाती हैं, डराती हैं।
हाँ, लेकिन फिर स्रोत कहता है कि एक हल्की सी झिड़की से वे सुबह तक हवा में उड़ने वाले भूसे की तरह गायब हो जाती हैं। मतलब रात में खौफ और सुबह गायब।
सही कहा। इसके बाद अध्याय 18 में कूश یعنی پراچین ایتھیوپیا یا مصر کے علاقے کا ذکر آتا ہے، وہاں کے لوگ مدھو مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے ہیں، اپنے راجدوتوں اور سندیش واہکوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ راتوں رات کوئی راجنیتک گٹھ بندھن بنا سکیں۔
بالکل آج کی دنیا کی طرح، مطلب ہم بھی تو لگاتار اپنے اسمارٹ فونز پر، آئی فونز پر سندیش بھیج رہے ہیں، دنیا کی ہر سمسیا کو ترنت سلجھانے کی کوشش میں پاگلوں کی طرح ویست ہیں۔
ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لگاتار شور مچاتے رہیں گے تو ہم سرکشت رہیں گے،
لیکن اس کے بالکل وپریت وہ ایشوری پرتیکریا کیا ہے؟ سروت میں بتایا گیا ہے، میں شانت رہوں گا اور اپنے ستھان سے دیکھتا رہوں گا۔
یہ بہت ہی شکتیشالی وچار ہے، اسے اس صاف دھوپ والی گرمی کی طرح بتایا گیا ہے جو بنا کسی شور کے چھائی رہتی ہے۔
مطلب دنیا کی طاقت شور اور انماد میں ہے، جبکہ ایشوری طاقت شانتی اور وشرام میں ہے۔
بالکل، اور یہ شور اور انماد کیول ویکتیگت جیون تک ہی سیمت نہیں ہے۔ ڈاکٹر آسوالڈ کے ویاخیان کے انتم پرشنوتر بھاگ میں اس پر بہت وستار سے بات کی گئی ہے کہ کیسے آج کے سنستھانوں میں بھی یہ خوف گہرائی تک پھیل چکا ہے۔
ہاں، وشیش روپ سے جب بات دھارمک سنستھانوں کی آتی ہے۔
وشیشگیہ وہاں بنا کسی راجنیتک پکشپات کے ایک بہت بڑی چنتا ساجھا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دھارمک سنستھائیں دنیا کے طور طریقوں جیسے فنڈ ریزر یا پولیٹیکل ایکشن گروپس پر نربھر ہونے لگتی ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے،
اور پھر وہ کلچر وار یا سنسکرتی یدھ شروع ہو جاتا ہے۔
ہاں، لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو پوری طرح سے دانو بنا دیتے ہیں، اسے ڈیمنائز کر دیتے ہیں، اور اس پوری پرکریا میں جس پریم پر سب کچھ ٹکا ہونا چاہیے وہ پوری طرح غائب ہو جاتا ہے۔
بالکل، یہاں مجھے اس سروت میں چرچا کے دوران آیا وہ آرتھک ادھارن یاد آ رہا ہے جو بہت ہی سٹیک بیٹھتا ہے۔ جیسے کوئی دیش جب گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹتا ہے تو اس کی ارتھویوستھا چرمرا جاتی ہے نا۔
ہاں بالکل،
اسی طرح جب سماج یا سنستھائیں اس گاڈ اسٹینڈرڈ یعنی ستیہ اور پریم کے سدھانتوں سے ہٹ کر راجنیتک ہتھکنڈوں پر اتر آتی ہیں تو وناشکاری پرینام سامنے آتے ہیں۔ مطلب آستھا کا راجنیتیکرن کرنا اصل میں اس مول شانتی کو کھو دینا ہے۔
اور تب ہم بھی انہیں شور مچاتے راشٹروں کی طرح بن جاتے ہیں جو صبح تک بھوسے کی طرح اڑ جانے والے ہیں۔
صحیح کہا۔
تو کل ملا کر اگر ہم اس پوری وسترت چرچا کا سار نکالیں تو یہ وشلیشن ہمیں بہت سپشٹ روپ سے سکھاتا ہے کہ ہماری سچی سرکشا شکتیشالی گٹھ بندھنوں میں یا شور مچانے والی طاقتوں میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی چیزوں میں ہے۔
بالکل،
اصلی طاقت تو شانت رہنے میں، اپنی سیماؤں کو سمجھنے میں اور صحیح سدھانتوں کو اصل میں یاد رکھنے یعنی ان پر عمل کرنے میں ہے۔
ہاں، جب دنیا چیخ رہی ہو تب ہمیں بھن بھنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اس شانت ایشوری مانک پر ٹکے رہنا ہے۔
بالکل، تو چلیے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا وچار چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم آج کے اس بھن بھناتی شور مچاتی دنیا پر بھروسہ کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ اب شانتی ہمیں ڈرانے لگی ہے۔
یہ بہت گہری بات ہے۔
ذرا سوچئے، اگر کل وہ سب کچھ چھن جائے جسے ہم اپنی طاقت مانتے ہیں، ہماری تکنیک، ہماری ویوستھائیں، اور ہم اس کٹے ہوئے کھیت کی طرح ایک دم شانت چھوڑ دیے جائیں، تو کیا اس سناٹے میں ہم آخرکار اپنے نرماتا کو پہچانیں گے؟
یا پھر ہم ان بچی ہوئی دو چار ٹہنیوں کو بٹور کر اپنے لیے ایک نیا جھوٹا بھگوان بنانے لگ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا ہی ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔